ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। आगामी आर्थिक वर्ष के बजट पर संघीय संसद के दोनों सदनों में आज से विमर्श हुआ शुरू। देश जिस आर्थिक शिथिलता का सामना कर रहा है उसे गति दे सकने के हिसाब से बजट के क्रियान्वयन पर ध्यान देने की बात पर सत्तापक्ष के सांसदों ने दिया जोर। यारसा गुम्बा चुनने के लिए गए मुगु के चार लोगों की हुई मौत। सहकारी के 1,63,00,00,000 रूपये से अधिक के अपचलन के मामले में गिरफ्तार हुए सीबी लामा को पुलिस ने किया सार्वजनिक। और भीषण गर्मी के कारण भारत में कम से कम 56 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। संघीय संसद के दोनों सदनों में आगामी वर्ष के बजट पर विचार विमर्श शुरू हुआ है। प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा की अलग अलग बैठकों में अर्थमंत्री वर्षमान पुन ने आर्थिक वर्ष 2081-82 के बजट पर सामान्य विमर्श करने का प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्रोत के संकुचन और दबाव के बीच लाया गया बजट संतुलित है और इससे अर्थतंत्र को लय में लौटाने में मदद मिलेगी। ये बताते हुए कि आवश्यकता और औचित्य के आधार पर कर की दरों में परिमार्जन किया गया है, अर्थमंत्री पुन ने कहा कि इससे स्वदेशी उत्पादों और उद्योगों के संरक्षण में सरकार की नीति को अतिरिक्त बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के मनोबल को मजबूत करने, युवा शक्ति को देश में ही भविष्य ढूंढने में सहजता देने और अर्थतंत्र को लय में लौटाने के हिसाब से बजट आया है। प्रतिनिधि सभा में बजट पर विमर्श के दौरान सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि बजट के मौजूदा आर्थिक शिथिलता को गति दे सकने के विश्वास के साथ इसके क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वहीं नेकपा एमाले के सांसद एवं पूर्व अर्थमंत्री विष्णु पौडेल ने कहा कि बजट द्वारा कृषि में निवेश दशक की अवधारणा लगात अच्छे अच्छे विषय भी शामिल किए गए हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र में ही बजट घटाया गया है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। इससे पूर्व बैठक के शुरू में नेपाली कांग्रेस के सांसद रामहरि खतिवड़ा ने कानून के विपरीत नागरिकों को सड़क पर खड़ा करने का जिक्र करते हुए विरोध जताया था। प्रतिनिधि सभा के आकस्मिक समय में सांसद खतिवड़ा ने कहा कि गृहमंत्री के निर्देश पर बिना कानून ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय ने ड्रिंक एंड ड्राइव केस वाले नागरिकों को सड़क पर खड़ा किया था। उन्होंने आगे कहा कि सबको कानून के मुताबिक काम करना चाहिए। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में विशेष समय में बोलने वाले सांसदों ने संसद को प्रभावकारी बनाने लगात बातों पर जोर दिया था। बैठक में नेपाली कांग्रेस के सांसद गगन कुमार थापा ने सहकारी की रकम अपचलन के विषय में छानबीन के लिए गठित संसदीय छानबीन समिति को गृहमंत्री रवि लामिछाने से लेकर महान्यायाधिवक्ता तिरुमणि पोखरियाल तक को बयान के लिए बुलाने का सुझाव दिया। इसी तरह विभिन्न समसामयिक विषयों में विभिन्न दलों के सांसदों ने सदन का ध्यानाकर्षण कराया था। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल सुबह 11 बजे के लिए बुलाई गई है। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक ने मीडिया काउंसिल विधेयक 2080 के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा द्वारा प्रस्तुत मीडिया काउंसिल विधेयक 2080 के प्रस्ताव को सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकृत किया। इसी तरह बैठक में विधायन व्यवस्थापन समिति की सभापति जयंती देवी राय ने सुरक्षित कारोबार प्रथम संशोधन 2080 संबंधी विधायन व्यवस्थापन समिति का प्रतिवेदन पेश किया था। इसी तरह बैठक में उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दामोदर भंडारी द्वारा प्रस्तुत निवेश सहजीकरण संबंधी कुछ नेपाल आयनों को संशोधित करने के लिए बने अध्यादेश 2081 के प्रस्ताव को सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकृत किया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक कल दोपहर 12:15 बजे बुलाई गई है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *14## डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। सुदूर पश्चिम प्रदेश सभा की आज की बैठक में प्रदेश प्रमुख नजीर मियां ने प्रदेश सरकार का नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। प्रदेश सभा बैठक में उन्होंने प्रदेश सरकार के आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 के नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत किए। पिछले 2 दिनों में यारसा गुम्बा चुनने के लिए गए मुगु के 4 लोगों की मौत हो गई। प्रमुख जिला अधिकारी टोपेन्द्र केसी से मिली जानकारी के मुताबिक हाई अल्टीच्यूड के कारण उनकी मौत हुई थी। मनै पलोमे छायानाथ रारा नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 तल्लेख गांव के 20 वर्षीय देवराज बुढ़ा, वार्ड नम्बर 12 शुभा गांव के 29 वर्षीय मान बहादुर बुढ़ा, कंफा गांव के शुभान बुढ़ा और राज बहादुर सावत शामिल हैं। संघ प्रदेश और स्थानीय सरकार के संयुक्त आयोजन में मध्य प्रदेश श्रमाधान रोजगार मेला जनकपुर में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ है। मध्य प्रदेश के जनकपुर के उद्योग वाणिज्य संघ के सभा हॉल में आयोजित मेले का करीब 6,000 लोगों ने अवलोकन किया। इस मेले में करीब 2,000 युवाओं ने रोजगारी के लिए आवेदन दिया था। सहकारी की रकम अपचलन के आरोप में गिरफ्तार किए गए सीबी लामा को आज काठमांडू उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय ने सार्वजनिक किया है। लामा विरुद्ध कांतिपुर बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेड के बचतकर्ताओं के 1,51,00,00,000 रूपये की ठगी का आरोप लगाते हुए 852 लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतों के आधार पर कुछ दिनों पहले गिरफ्तार किए गए लामा को आज पत्रकार सम्मेलन करके सार्वजनिक किया गया है। सीबी लामा के नाम से पहचाने जाने वाले 49 वर्षीय चंद्र बहादुर तामांग काभरे पलांचुक की तेमाल गांवपालिका वार्ड नंबर 5 के निवासी और हाल में ललितपुर की बालकुमार स्थित वेस्टर्न अपार्टमेंट में रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक लामा की अध्यक्षता वाले पशुपति बचत तथा ऋण सहकारी के विरुद्ध बीते भाद्र महीने में ही 54 लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन पर उस सहकारी में हुए 12,00,00,000 रकम अपचलन का भी आरोप है। उस सहकारी के रकम अपचलन के संबंध में भी नेपाल प्रहरी के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। ये जानकारी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भट्टराय ने दी। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप यादव ने प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल कुपंडोल स्थित नए भवन को यथाशीघ्र संचालित करने का निर्देश किया। आज मंत्री यादव ने स्वास्थ्य मंत्रालय के पदाधिकारियों सहित की टोली सहित प्रसूति गृह का अनुगमन करते हुए ऐसा निर्देश किया। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत में मार्च से मई के बीच भीषण गर्मी की चपेट में आए 24,849 लोगों में से 56 की मौत हो गई है। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार केवल मई में ही 46 लोगों की मौत हुई। इसमें बताया गया कि 1 मई से 30 मई के बीच भारत में लू के 19,189 संदिग्ध मामले सामने आए। इन आंकड़ों में उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में हुई मौतों की संख्या को शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में मौतों का आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है। भारत के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। भारत में शुक्रवार को गर्मी से संबंधित मामलों में कम 40 लोगों की मौत होने की जानकारी मिली, जिनमें उत्तर प्रदेश और बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए तैनात 25 कर्मचारी भी शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक बृहस्पतिवार को भी भीषण गर्मी के कारण ओडिशा में 10, बिहार में 8, झारखंड में 4 और उत्तर प्रदेश में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं राजस्थान में गर्मी से अब तक कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में पिछले 3 महीने के दौरान गर्मी से संबंधित बीमारियों के कारण 14 लोगों की मौत हो गई। वहीं महाराष्ट्र में 11 लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी के अनुसार इन मौतों का कारण भीषण गर्मी या हाइपरथर्मिया हो सकता है, क्योंकि शरीर का तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक था। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आगामी आर्थिक वर्ष के बजट पर संघीय संसद के दोनों सदनों में आज से विमर्श हुआ शुरू। देश जिस आर्थिक शिथिलता का सामना कर रहा है उसे गति दे सकने के हिसाब से बजट के क्रियान्वयन पर ध्यान देने की बात पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने दिया जोर। यारसा गुम्बा चुनने के लिए गए मुगू के 4 लोगों की हुई मौत। सहकारी के 1,63,00,00,000 रूपये से अधिक के अपचलन के मामले में गिरफ्तार हुए सीबी लामा को पुलिस ने किया सार्वजनिक। और भीषण गर्मी के कारण भारत में कम से कम 56 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।